बात करने वाली हूँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, और बिजनेस क्या होता है, उसके क्या सिग्निफिकेंस होती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ की क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। बट बिजनेस का किस तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है, क्या वो इंडिविजुअली मैनेज किया जाता है या ग्रुप में मैनेज किया जाता है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक में जो चर्चा करेंगे वो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले फिर से हम ये समझ लें कि बिजनेस होता क्या है। सो बिजनेस मतलब होता है व्हेन यू ब्रिंग टुगेदर ऑल दी वेरियस रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड यू ब्रिंग देम टुगेदर सो दैट यू आर एबल टू अटेन सर्टन ऑब्जेक्टिव्स। अब इसको मैनेज और अरेंज करने के लिए हमें या तो एक इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है या हमें एक ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो इंडिविजुअल या ग्रुप के माध्यम से हम ये जानते हैं या ये सीखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अब किस किस प्रकार के हो सकते हैं। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन अ बिजनेस। नाउ दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी चर्चा, जो पहले चार हमारे माध्यम हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम समझ लें और डिस्कस कर लें। और जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि अपने आप में ही ये बहुत एक इलैबोरेट टॉपिक है, तो इसको हम अलग से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सोल प्रोप्राइटरशिप की। आप जब एक अपनी लोकल मार्केट में जाते हैं तो छोटी छोटी दुकानें देखते हैं, तो वो दुकानें जो हैं वो एक आदमी मैनेज करता है। तो वो जो उस आदमी जो मैनेज कर रहा है उस शॉप को, हम उसको बोलते हैं ओनर, और वो उसका सिंगल ओनर होता है या सिंगल प्रोप्राइटर होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब यही है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेला आदमी जिसके पास ओनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है, और वो उस दुकान का मालिक है और उसको वो मैनेज कर रहा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस फॉर्म है विच इज़ सोलली मैनेज्ड एंड अरेंज्ड बाय अ सिंगल पर्सन, एंड ही और शी ब्रिंग्स द एंटायर कैपिटल, बेयर्स द एंटायर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड मैनेजेस द बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जहाँ पर ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो एक सिंगल पर्सन के पास है। तो उसमें जितना भी रिस्क है, उस बिजनेस की जितनी अथॉरिटी है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ टेकन बाय दैट सिंगल पर्सन। नाउ इन चैप्टर्स में हम ये भी जानेंगे कि इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके मेरिट्स, लिमिटेशंस क्या हैं, और इस तरह का जो बिजनेस है वो कहाँ के लिए सूटेबल हो सकता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इट इज़ सिंगल ओनरशिप। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन हु ब्रिंग्स इन ऑल द रिसोर्सेज एंड स्टार्ट्स द बिजनेस ऑन हिज और हर ओन। सेकेंड फीचर है दैट देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। दैट मीन्स द पर्सन हु ओन्स द बिजनेस इज़ द वन हु मैनेजेस द शो ऑल्सो। सो ही यूजेज हिज ओन इंटेलेक्ट, ही यूजेज हिज ओन स्किल टू मैनेज द बिजनेस, एंड एज अ रिजल्ट ओनरशिप और मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तीसरा इसका फीचर है दैट देर आर लेस लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड। इसका मतलब कि इस बिजनेस को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती। तो एक तरह से ये बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका है बिजनेस स्टार्ट करने का, क्योंकि इसमें कोई भी आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इसका वो है दैट इज़ देर इज़ नो सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस यूनिट की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है एंड इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द ओनर. सो एज अ रिजल्ट द बिजनेस मैन इज होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस दैट इज बींग परफॉर्म्ड. नेक्स्ट इज दैट देर इज़ नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. क्योंकि वो अकेला आदमी अपना बिजनेस मैनेज कर रहा है तो उसको अपना जो भी नफ़ा या नुकसान हो रहा है वो किसी के साथ भी मैनेज नहीं करना पड़ता या शेयर नहीं करना पड़ता. इट इज़ अ वन मैन आर्मी, इट इज़ वन मैन कंट्रोल. सो द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑलवेज रिमेन्स विद द ओनर. और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि लाइबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर बिजनेस में कोई लॉसेस हो जाते हैं तो वो बिजनेस मैन की अपनी इंडिविजुअल लाइबिलिटी है उसकी भरमाई करना. और अगर वो अपने बिजनेस से उसको नहीं पेमेंट कर पाता है तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स या पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पेमेंट करना पड़ेगा. सो द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस कैन एक्सटेंड इवन अप टू द पर्सनल एसेट्स एंड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेसमैन. अब इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद व्हाट कैन बी द वेरियस मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप. तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके फ़ायदे क्या हैं. जैसा कि अभी हमने फीचर्स में समझा है कि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व नहीं होती. सो एज अ रिजल्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका मेरिट निकलता है वो ये है दैट इट इज़ वेरी ईजी टू फॉर्म. क्योंकि इसमें कोई भी आपकी लीगल कंपल्शंस या लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है. एंड सिमिलरली जैसा कि आसान है इसको खोलना वैसा ही इस आसान है इसको बंद करना भी. सो इट इज़ ईजी टू फॉर्म एंड ईजी टू वाइंड अप ऑल्सो. द डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी क्विक एंड प्रॉम्प्ट. क्योंकि सिंगल आदमी ही पूरे शो को मैनेज कर रहा है या बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो एज अ रिजल्ट उसको किसी के साथ नॉलेज शेयर नहीं करना, किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना. और जितनी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की बिजनेस के तहत उसको अकेले ही मैनेज करनी है. तो एज अ रिजल्ट जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत प्रॉम्प्ट और क्विक हो जाती है. अनदर इम्पॉर्टेंट मेरिट विच इमर्जेस इज दैट इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट मोटिवेशन. क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट सिंगल ओनर के पास ही जा रहा है सो एज अ रिजल्ट वो जितना ज़्यादा उसमें हार्डवर्क करेगा उतना उसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगा. सो एज अ रिजल्ट दिस एस्पेक्ट ऑलवेज कीप्स द प्रोप्राइटर और द ओनर मोटिवेटेड टू रन हिज बिजनेस मोर एफिशेंटली, मोर सक्सेसफुली सो दैट ही कैन मेक बेटर प्रॉफिट्स. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. इसका मतलब है दैट दिस बिजनेस इज ईजी टू अफेक्ट चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. सो एक्सपेंशन करना है या कटेलमेंट करना है, मतलब कि बिजनेस को अगर आपको एक्सपैंड करना है या इसको कहीं पर आपको कम करना है तो आपके पास अपनी पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबिलिटी है. आप अपने आप में इसमें डिसीजन ले सकते हैं और जब चाहें इसको एक्सपैंड कर सकते हैं और जब चाहें इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं. तो इसमें आपको किसी की भी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट यू आर मेंटेनिंग बिजनेस सीक्रेट्स. दैट मीन्स द बिजनेस सीक्रेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर आर नोन ओनली टू द ओनर. You don't have to share this information with other persons around. Whereas, अभी हम आगे चल के दूसरे अलग forms of business organization के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पर आप ये जानेंगे कि उन business organization के forms में आपको अपने company के बहुत सारे financial statements जिसको हम बोलते हैं या accounting records जिसको हम बोलते हैं वो आपको अपने users के साथ शेयर करने पड़ते हैं. तो वो हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उभर के आता है कि बिजनेस सीक्रेट्स जो हैं वो सिर्फ प्रोप्राइटर के पास ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने कोई डीमेरिट्स नहीं हैं, बहुत सारे इसके डीमेरिट्स भी हैं। अब ये जानते हैं कि इसकी लिमिटेशंस या डीमेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो उभरता है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस एक सिंगल ओनर मैनेज कर रहा है और अपने पर्सनल रिसोर्सेज से मैनेज कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं वो कई बार बहुत कम हो जाते हैं। तो जब उसको कभी एक्सपैंड करना हो या बिजनेस को बढ़ाना हो तो रिसोर्सेज की कमी के कारण वो ये सब डिसीजंस नहीं ले पाता। सेकेंड इज द लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब अगर बिजनेसमैन या ओनर को कुछ हो जाता है किसी कारणवश तो वो बिजनेस बंद करना पड़ जाता है, तो आप उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि ओनर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस बिजनेस की। क्योंकि रिसोर्सेज कम है तो एज अ रिजल्ट लार्ज स्केल ऑपरेशंस इसमें पॉसिबल नहीं हो पाते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्रंच है। तो एज अ रिजल्ट ये बिजनेस जो है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन इज द लिमिटेड मैनेजेरियल एक्सपर्टाइज। अब एक आदमी हर चीज़ में सामर्थ्य नहीं रख सकता या एक्सपर्टाइज नहीं रख सकता, तो इस कारणवश बहुत सारी जो डिसीजंस हैं जो स्किल बेस्ड होती हैं या जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होती हैं, तो अगर बिजनेसमैन या ओनर में उन चीज़ों की क्षमता नहीं है तो एज अ रिजल्ट वो डिसीजंस या बहुत एक्सपर्ट तरीके से वो डिसीजंस नहीं ले पाते और कई बार ये बिजनेस फ्लॉप भी हो जाता है या बहुत सक्सेसफुली नहीं चल पाता है। तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है वो कहाँ पर अब सूटेबल है, वो उन जगह पर सूटेबल है जहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, जहाँ पर रिसोर्सेज हमें कम चाहिए। तो एक तरह से हम बहुत ही छोटे स्केल पे जब हमें बिजनेस करना हो तब सोल प्रोप्राइटरशिप जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं और अब हम दूसरे बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो कि है पार्टनरशिप। जब बिजनेस थोड़ा सा हमें लगता है कि हम एक्सपैंड कर सकते हैं या हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो उस केस में दो या तीन लोग या उससे अधिक लोग मिलकर एक जब बिजनेस करने की सोचते हैं तो उस बिजनेस फॉर्म को हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। तो एक तरह से ये एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पीपल हु पूल इन देयर फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स इज व्हाट इज रेफर टू एज पार्टनरशिप। अब जब पार्टनरशिप बनता है तो ये ओरली भी हो सकता है, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है तो हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, लेकिन अगर ये रिटन फॉर्म में नहीं है, ओरली आपस में जो पार्टनर्स हैं उन्होंने किसी बिजनेस के लिए डिसाइड कर लिया है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड कर लिया है या बाकी और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए हैं, बट वो रिटन मोड में नहीं है, ओरल भी हो सकता है या इम्प्लाइड भी हो सकता है, तो इन दैट एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट वी हैव द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो इन दैट केस दे अप्लाई टू दिस काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप। सो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप इन अ सर्टन मैनर। इट सेज दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. तो ये जो definition है ये exact definition है partnership business की as per the Partnership Act 1932। अब इसी definition से हम ये समझेंगे कि इसके characteristic features क्या हैं। तो पहला है that it involves two or more person, मतलब दो या दो से अधिक लोग जो हैं वो पार्टनरशिप में आ सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं। तो मिनिमम दो होने चाहिए और मैक्सिमम लिमिट जो है वो अगर बैंकिंग बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम 10 की हो सकती है, और बाकी और कोई भी नॉन बैंकिंग बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर जो है वो नंबर 20 से अधिक नहीं हो सकता. सेकेंड इज़ दैट इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. इसका मतलब है कि जो पार्टनर्स या जो लोग आपस में इन्वॉल्व हुए हैं उस बिजनेस को करने के लिए, वो किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उन्होंने कुछ अपने नियम या कानून बनाए हैं. तो एक तरह से उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट माइनर्स या इनसॉल्वेंट लोगों में नहीं हो सकता है. देन शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस. अब क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट्स किस तरह से शेयर किया जाएगा. अगर तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो आप उसमें अपना एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स उसमें लिख सकते हैं किस बेसिस पे किया जाएगा. जनरली वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ जितना कोई भी पार्टनर अपना बिजनेस में शेयर लेकर आया है. और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो क्योंकि हम प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उस केस में लगाते हैं, तो उसमें जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो प्रॉफिट्स हों या चाहे वो लॉसेस हों. सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये समझने की है कि आप पार्टनरशिप सिर्फ लॉफुल बिजनेस के लिए कर सकते हैं. तो कोई भी अनएथिकल या अनलॉफुल बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं कर सकते. देन द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. जैसा कि अभी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी समझा था कि लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स की अनलिमिटेड का मतलब है कि इट कैन एक्सटेंड टू योर पर्सनल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑल्सो. तो अगर तो बिजनेस में कोई लॉसेस होते हैं तो उस केस में जो उससे डेट्स निकल के आ रहे हैं या ऑब्लिगेशंस जो निकल के आ रही हैं, उसको मीट करने के लिए या उसको देने के लिए, उसके भुगतान करने के लिए पार्टनर्स को इंडिविजुअली भी लायबल होना पड़ेगा. तो अपने पर्सनल एसेट्स या पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को बेच के भी आपको वो लायबिलिटीज़ पे करनी पड़ेगी. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ वॉलेंटरली. दैट मीन्स इसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर करवानी है. ये पार्टनर्स की अपनी चॉइस पे है कि उनको पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करानी है या नहीं करानी है. तो इसके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है. लेकिन अगर वो फर्म अनरजिस्टर्ड रहती है और आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो उस केस में उस पार्टनरशिप फर्म को थोड़े से लिमिटेशंस हो जाती हैं. ये लिमिटेशंस किस तरह की होती हैं, जैसे कि ये फर्म जो है दूसरों के ऊपर कोई भी अपना कोर्ट केस नहीं लागू कर सकती, अपने क्लेम्स को एडजस्ट कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकती. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे बचने के लिए हमेशा बेहतर होता है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को जो है रजिस्टर करवा लें. अब हम आगे समझते हैं कि इसके अपने मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या हैं. जब पार्टनरशिप फर्म बनती है तो इसके क्या मेरिट्स हैं और इसके क्या डीमेरिट्स हैं. तो सबसे पहले तो इट इज़ अगेन ईजी टू फॉर्म, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ और लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं हैं. तो एज अ रिज़ल्ट जब भी लगे कि दो या दो से अधिक लोग अपना रिसोर्सेज लाकर एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो बहुत आराम से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और उनको जो है कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक लोग आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे पास रिसोर्सेज का भी क्रंच नहीं होता है. इनफैक्ट रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा ही होते हैं और डिसीजन मेकिंग भी सोल प्रोप्राइटरशिप से बेहतर हो जाती है, क्योंकि इसमें दो से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं. तो डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी एक्सटेंसिव होगी और सब अपना अपना कैलिबर और एक्सपर्टाइज यूज़ करके कोई डिसीजन लेंगे. तो इसलिए डिसीजन मेकिंग एटलीस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप से बेहतर हो जाती है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझने की है, जो बिज़नेस का जो रिस्क है वो भी यहाँ पर शेयर हो जाता है. तो अगर बिज़नेस में लॉसेस हो रहे हैं या कोई अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, तो पार्टनर्स अपने आप में आपस में बांट लेते हैं. और जो स्पेशलाइज्ड कुछ कॉम्पिटेंसीज या कुछ कैलिबर्स हैं पार्टनर्स में, वो भी बहुत फ़ायदेमंद बिजनेस के लिए साबित होती हैं। तो ये तो सारे हो गए इसके जो मेरिट्स हैं या उसके बेनिफिट्स हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के। अब हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में सारी बहुत अच्छाइयाँ हैं, कुछ उसमें लिमिटेशंस भी हैं जिसकी वजह से और बिजनेस फॉर्म्स उभर के आते हैं। तो सबसे पहले है, अभी जैसे कि हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में समझा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि लायबिलिटी बिजनेस की पार्टनरशिप के प्राइवेट लाइफ को भी अफेक्ट करती है, तो एज अ रिजल्ट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। सो अगर बिजनेस में कोई लॉसेस होते हैं तो उस केस में जो लॉस है वो पार्टनर्स को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट एसेट्स से भी देने पड़ सकते हैं। ये बिजनेस में बहुत इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इंस्टेबिलिटी अब कैसे हो सकती है, क्योंकि ये बिजनेस एक एग्रीमेंट के तहत बना हुआ है, तो जैसे ही कोई भी पार्टनर इसमें से रिज़ाइन करता है, रिटायर होता है या किसी कारणवश उसको छोड़ना पड़ता है, इलनेस की वजह से या डेथ की वजह से, तो पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो अब जो है आपका बिजनेस डिसॉल्व हो गया, अब आपको नए सिरे से एक फिर से अपना पार्टनरशिप फर्म अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको फिर से नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन पुराना वाला जो पार्टनरशिप है आपका वो ख़त्म हो जाता है। तो इस कारणवश इस बिजनेस में स्टेबिलिटी बहुत आराम से नहीं आती और हमेशा ये इनस्टेबल काइंड ऑफ बिजनेस रहता है। एक और बात इसमें समझने की ये है, क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक लोग काम करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी जो है बहुत कॉमन फीचर हो जाता है। जब भी दो या दो से अधिक लोग काम करेंगे तो बहुत एक आम बात है कि वहाँ पर कोई भी डिसीजन को लेकर बहुत जल्दी एक सहमति नहीं बन सकती, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा ही आएगा, और जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आने के भी चांसेस हमेशा रहते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट अगर जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए तो बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग होते हैं तो उसके रेपरकशन बिजनेस पे भी कहीं ना कहीं आते हैं। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस अब कहाँ के लिए सूटेबल हो जाता है, फिर से ये बिजनेस जो है जब आपको बहुत लार्ज स्केल पे नहीं करना, या जनरली हम इस पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस को प्रोफेशनल सर्विसेज के फॉर्म में एक्सेप्टेंस देते हैं, या वहाँ पर भी हम मानते हैं कि ये बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इस तरह की जब आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर ये बिजनेसेस ज़्यादा सूटेबल पाए गए हैं। अब हम थोड़ा सा पार्टनरशिप डीड के बारे में भी यहाँ पर समझ लेते हैं और बात करते हैं कि व्हेन द एग्रीमेंट इज देयर अमंग द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस, दिस कैन बी इन राइटिंग और ओरली, जैसा कि अभी हमने समझा। प्रेफरेबल तो यही है कि ये एग्रीमेंट जो बने वो राइटिंग में हो। तो उस एग्रीमेंट को हम एक टेक्निकल नाम देते हैं और वो टेक्निकल नाम है पार्टनरशिप डीड का। और उस पार्टनरशिप डीड में अब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो बहुत एक लीगल डॉक्यूमेंट बन सके, उसमें जो है हमें ये सब लिखना चाहिए, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म हो गया, नेचर ऑफ द बिजनेस हो गया, लोकेशन ऑफ द बिजनेस हो गया, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियोज, ड्यूटीज, पावर्स, ऑब्लिगेशंस, सैलरीज विड्रॉन बाई दी पार्टनर्स, प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट्स, प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो ये सब अगर हम चीज़ें उसमें मैंशन कर देते हैं तो हम उस पार्टनरशिप को बहुत ही स्मूथफुली और बहुत कॉन्फ्लिक्ट के बगैर उसको हम जो है मैनेज कर सकते हैं, और जब भी हम इसको बंद करना चाहें तो वहाँ पर भी इसको मैनेज करने के जो आराम से जो इसको मैनेज किया जा सकता है वो थोड़ा सा इसमें आसानी हो जाती है। तो इसीलिए प्रेफरेबली पार्टनरशिप डीड को राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो उसके अपने फायदे हैं। अब हम आगे बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम बोलते हैं पुश्तैनी बिजनेस। और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या इंडियन सिनेरियो में बहुत ही कॉमन है और आपने भी ज़रूर सुना होगा। जब हमारा जनरेशन से बिजनेस चला आ रहा है तो ये एक अलग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है, जिसको हम नाम देते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब है कि जॉइंट फैमिलीज बिजनेस करती आ रही हैं एक पुराने जेनरेशन से या पुराने समय से। तो सक्सेसिव जेनरेशंस जब उस बिजनेस को ओन करती हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इस फैमिली बिजनेस में एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, जिसको हम बोलते हैं कर्ता, और वो पूरा बिजनेस को मैनेज करता है। और उसके साथ उसके और फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं को पार्सनर्स। को पार्सनर्स जो होते हैं वो भी बिजनेस में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, और वो भी उनके पास भी पूरे ओनरशिप राइट होते हैं उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए। और इस बिजनेस में जो मेंबरशिप होती है वो केवल और सिर्फ केवल बाय बर्थ होती है और सिर्फ मेल मेंबर्स को दी जाती है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि इसमें देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन फॉर माइनर्स टू बिकम दी मेंबर्स। जैसा कि अभी हमने पार्टनरशिप में समझा, वहाँ पर माइनर्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं ऑपरेट कर सकते। लेकिन इस केस में यहाँ पर माइनर्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, माइनर्स भी इक्वली जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट हो सकते हैं। अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेशन जैसे कि अभी हमने समझा कि इट इज़ अ फैमिली ओन बिजनेस फ्रॉम जेनरेशंस। सो इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एनी लॉ, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एनी एग्रीमेंट, बट इट्स अ फैमिली बिजनेस विच इज़ बीइंग कैरिड सक्सेसफुली फ्रॉम जेनरेशंस। सेकेंड इज़ मेंबरशिप, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें जो मेंबरशिप है वो एक राइट है उस फैमिली मेंबर का, जो कि आपको बाय बर्थ मिलता है। सो इफ़ यू आर अ मेल मेंबर बॉर्न इन टू द फैमिली हु हैज़ अ फैमिली बिजनेस, देन एज अ रिजल्ट यू ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ दैट बिजनेस। बट सिर्फ मेल मेंबर्स को ही इसमें मेंबरशिप दी जाती है। देन As regards the legal status of this business, it is a jointly owned family business and it is governed by the Hindu Succession Act of 1956. Next, हम बात करते हैं कि इसमें profit कैसे share किया जाता है। तो इसमें जितने आपके family members हैं, जिनको हम co-partners बोलते हैं, उन सब का इक्वल शेयर होता है। तो इसमें हमें कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जितने आपके को पर्सनर्स होंगे और जितना प्रॉफिट होगा वो इक्वली सब में बराबर के हिस्सेदारी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एज रिगार्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस कि मैनेज कौन करेगा, तो इसमें दो कैटेगरीज हो जाती हैं। एक को हम बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली, जो कि कर्ता होता है, और दूसरा होते हैं फैमिली मेंबर्स, जिनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं। तो सारा मैनेजमेंट जो है वो कर्ता और को पार्टनर्स ही करते हैं, लेकिन कर्ता के पास ज़्यादा सुप्रीम पावर्स होती हैं। तो जितने बिजनेस डिसीजंस हैं या जितने राइट्स हैं वो सारे कर्ता के पास होते हैं, और को पार्टनर्स को उनके ऑर्डर्स को सिर्फ फॉलो करना होता है। और ये बिजनेस में एक अच्छी बात ये है that this business can continue even after the death of any co-partners or the karta. So unlike the partnership business, जहाँ पर partnership में partners में अगर कोई retire हो जाए या death हो जाए या किसी कारणवश वो business छोड़ के चला जाए तो partnership ख़त्म हो जाती है या dissolve हो जाती है, but इस case में जो continuity है business की वो हमेशा रहती है। और जब कर्ता रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो एल्डेस्ट मेंबर होता है उस फैमिली का, वो टेक ओवर कर लेता है कर्ता की पोजीशन का। अब हम जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की या बेनिफिट्स की। सबसे पहले है अश्योर्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब कि जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको, या जो को पार्टनर्स हैं स्पेशली, उन सबको इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डे टू डे फंक्शनिंग में बिजनेस के पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट द को पार्टनर्स वुड बी गिवन एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इसमें एक और चीज़ ये जानने की है कि यहाँ पर आप प्रॉफिट शेयरिंग अपने माइनर्स के साथ भी करोगे, या कोई पार्टनर अगर कोई सिक है या फिजिकली चैलेंज्ड है तब भी उसका शेयर जो है वो अश्योर्ड है और वो फिक्स्ड है। सेकेंड एडवांटेज आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑल्दो इसमें सारे फैमिली मेंबर्स मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन कर्ता के पास एक कंप्लीट फ्रीडम है सारे बिजनेस के डिसीजंस लेने की। तो एज अ रिजल्ट डिसीजन मेकिंग क्योंकि एक ही आदमी के पास है, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है और विदाउट एनी इंटरफेरेंस होती है। थर्ड इज, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अभी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में भी समझा, जहाँ पर लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड थी। अब इस केस में लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस। तो उनकी पर्सनल लाइबिलिटी बिजनेस में कुछ नहीं है। अगर बिजनेस के लॉसेस होते हैं तो उनकी, उन्होंने जितना भी बिजनेस में अपना शेयर दे रखा है सिर्फ उसी से ही रिकवरी की जा सकती है। लेकिन कर्ता के केस में उसके पर्सनल एसेट्स और पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी रिकवरी की जा सकती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि द लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर्स इज लिमिटेड, वेयर एज द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। ओके, नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब इसकी क्या क्या वीकनेसेस हैं या ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर भी क्योंकि फैमिली मेंबर ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में एक रिसोर्स क्रंच हमेशा रहेगा। आप बिज़नेस को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की एक लिमिटेशन है। तो इसीलिए इस बिज़नेस को आप बहुत लार्ज स्केल में आप इस्टेब्लिश या एक्सपैंड नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें डीमेरिट है दैट देर इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर दी को पार्टनर्स, क्योंकि को पार्टनर्स शो तो मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस में हाथ तो बटा रहे हैं, लेकिन बिजनेस में डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे। तो क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग जो हैं आपके कर्ता करता है, तो इसीलिए उनको कोई मोटिवेशन नहीं है बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने का और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। देन कर्ता कैन ऑलवेज मिसयूज द पावर, क्योंकि कर्ता के पास सारा फ्रीडम है बिजनेस में डिसीजन मेकिंग का और उसको मैनेज करने का। तो कई बार कर्ता जो है वो अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है अपने पर्सनल बेनिफिट्स या गेन्स के लिए। और इस बिजनेस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के हमेशा बहुत चांसेस बने रहते हैं। तो ये बिजनेस अब कहाँ सूटेबल है, आई थिंक नाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस इज ऑल्सो सूटेबल ओनली एट अ वेरी स्मॉल स्केल और वेयर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड आर वेरी लेस। तो ये तो हमने समझा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। अब हम थोड़ा सा एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कॉरपोरेट सोसाइटी या कॉपरेटिव सोसाइटी, जिसको आप सहकारी समिति के फॉर्म में जानते होंगे। तो सहकारी समिति या जिसको अब हम कॉपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। और इसके फॉर्म्स आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में भी आपने देखे होंगे, अमूल, मदर डेयरी या श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, ये सारे जो हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में होते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है जहाँ पर कुछ लोग अपने कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसके लिए काम करते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन कर सकें। तो क्या मतलब निकला कि इट इज़ कम्प्लीटली अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव सम कॉमन इंटरेस्ट एंड थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन दे वॉन्ट टू फुलफिल देयर कॉमन इंटरेस्ट। तो को मीन्स विद एंड ओपेरी मीन्स टू वर्क, सो दे कम टुगेदर टू वर्क विद वन अनदर सो एज टू फुलफिल देयर ओन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड इट इज़ प्योरली वॉलेंट्री। तो इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कुछ लोग जो है मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं और उसको अपने इंटरेस्ट के लिए प्रमोट करते हैं और एक दूसरे की मदद से कुछ अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल करते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं कि सबसे पहले तो ये कम्प्लीटली वॉलेंट्री है, ओपन मेम्बरशिप है, इसमें जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी होना ज़रूरी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत इसको किया जाता है। और कैपिटल जो है इसमें जितने मेंबर्स होते हैं वो सारे अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्विस मोटिव। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, जैसे कि ऑल्दो इट इज़ ईजी टू फॉर्म, देर इज़ ओपन मेम्बरशिप, there is tax concession given by the government, but still there are certain demerits, like there is limited capital, there is lack of managerial expertise, lack of interest, aur jaise hi logon ka aapas mein interest khatam hota hai to ye cooperative society bhi khatam hone lagti hai, to phir se ye bahut hi chote organizations ke liye zyada faydemand hoti hai। तो आज का जो हमने discussion किया वो हमने यहाँ पर जाना कि different forms of business organization क्या होते हैं।